तदिन्द्रियाणाम् अन्वाप्य वर्त्मने नमो नमस्तुभ्यम् असह्य वेग शक्तितराय अखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अन्वाप्य वर्त्मने। पढ़िए। नमो तुभ्यम् असह्य वेगम् अन्नपालाय गुणशक्ते नमो नमस्तुभ्यम् असह्य वेग शक्तित्राय अखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्ते कदिन्द्रियाणामवाप्यवर्त्मने नमो नमस्तुभ्यम् असह्य वेग अखिलगुणाय शक्ते अनुवाप्य या नाम अनुवाप्य। लेडीज बोलिए। नमो नमस्तुभ्यम् असह्य वेग शक्तित्राय अखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्ते कदिन्द्रियाणाम् अन्वाप्य वर्त्मने नमो नमस्तुभ्यम् असह्य वेग धीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्ते कदिन्द्रियाणामन्वाप्य वर्त्मने। और कोई? ठीक है। नमो नमस्तुभ्यम् असह्य वेग शक्तितराय अखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्ते कदिन्द्रियाणाम् अन्वाप्य वर्त्मने।
शब्दार्थ। वैसे तो ये श्लोक ऐसा भी कहा गया है कि रोजाना जब उठते हैं तो उठ के एकदम पढ़ने चाहिए, तो इतना तो संभव नहीं होता, लेकिन कम से कम क्लास में भी सारे जन नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग बोल पाते हैं, चार पांच लोग ही बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी सुनने वाले को भी लाभ मिलता है और बोलने वाले को भी लाभ मिलता है। शब्दार्थ। नमः, नमस्कार करता हूं। नमः, पुनः नमस्कार है। तुभ्यम्, आपको। असह, दुस्तर। वेग, वेग और प्रवाह। शक्ति तराया, तीन शक्तियों वाले परम पुरुष को। अखिल, ब्रह्मांड का। धी, बुद्धि के लिए। गुनाया, इंद्रिय विषयों के रूप में प्रकट होने वाले। प्रपन्न पालाय, शरणागतों को शरण देने वाले। ईश्वर को। दुरंत शक्ति है, दुर्जन शक्ति वाले, सॉरी दुर्जय शक्ति वाले। कत इंद्रिया नाम, उन व्यक्तियों द्वारा जो इंद्रिय संयम करने में अक्षम हैं, अनवापे दुर्लभ वर्तमने पथ पर। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के, हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूं। मेरे पीछे दुराइए। हे प्रभु, तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूं। सब बोलिए साथ में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुद्री। सासा बोलिए, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टके। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर गजराज कह रहे हैं कि आप तीन शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं, अशक्ति लाभ लोभ काम आदि। ये तीन शक्तियां जो हैं, इनके कंट्रोलर भगवान हैं। और साथ में ये भी कहा, और ये इंद्रियों का सुख जो है उसके हेड है, फाउंटेन हेड, क्योंकि भगवान का एक नाम है हर्षिकेश, इंद्रियों के स्वामी। तो जब आपने अपनी इंद्रियों को भी अगर भोगना है तो वो भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकता है, सुख भी नहीं मिल सकता है। और साथ में एक बात और कही साथ में कि सुख तो लो, ठीक है बच्चों, लेकिन जो लोग इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते वे भगवान तक पहुंच नहीं सकते। ये भी साथ में है, इंद्रियों को कंट्रोल करना भी जरूरी है। बिना इंद्रियों को कंट्रोल किए हुए भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो लाल कपड़े में ब्रह्मचारी हो। लेकिन है ये मुश्किल है, वैसे इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ये संभव है। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न होता है कि जो गृहस्थी है वो ब्रह्मचारी कहते, जो एक पत्नी व्रत है केवल भक्त संतान पैदा करने के लिए पत्नी के पास जाता है तो वो ब्रह्मचारी ही कहलाता है। लेकिन कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं करना है कुछ भी। तो इसलिए इंद्रियों को वश में करने के लिए भगवान की शरणागत होना पड़ेगा। ऋषि की ऋषि की सेवनम भक्ति रुचते, ऐसा भी कहा गया ना। तो भक्ति का नाम ही है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा असक्ति, लोभ तथा काम, ये तीन दुस्तर वेग हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। आसक्ति चाहे वो पत्नी में हो, चाहे वह पति में हो, चाहे बच्चों में हो, किसी भी चीज में हो, भगवान को छोड़ करके वो ठीक नहीं है, वो बंधन का कारण है। ऐसे ही लोभ, लोभ लोभ भी बंधन का कारण है। घर बार छोड़ करके लंगोट पहन करके साधु बन जाते हैं, उसके बाद भी लोभ मन में रहता है, बड़ा मुश्किल है लोभ को भी हटाना, ये भी बंधन का कारण है। काम, काम माने इच्छाएं भी होती हैं, काम माने स्त्री पुरुष का जो अट्रैक्शन है, आकर्षक है, उसको भी काम बोलते हैं। तो इच्छा भी खत्म करनी बड़ी मुश्किल है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, जो मिल जाए साधु बन गए तो मुझे ये मठ चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे जीवीसी बनना है, ऐसी भी कामनाएं होती हैं, ये इच्छाएं हैं। और मन स्त्रियों की तरफ भागना या स्त्रियों का मन पुरुषों की तरफ भागना, ये काम काम है, इसको भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जो भगवान पुरुषोत्तम के चरण कमलों की शरण लेता है तो भगवान उसको इतनी फैसिलिटी दे देते हैं ताकि वो इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख जाए, ऐसा उनके दिमाग में भर देंगे भगवान, ज्ञान दे देंगे। लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये आसक्ति, लोभ तथा काम, ये तीनों बड़े मुश्किल हैं इनको कंट्रोल करना। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक हैं, माला जाप कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती ध्यान आपका जिनसे आसक्ति है, या कोई लोभ आपके मन में आ गया, या काम वासना या इच्छाएं आपके मन में आ गई, तो ध्यान उधर जाता जाएगा। वैसे तो माला जाप कर रहे हैं लेकिन ध्यान इन तीनों चीजों की ओर जा रहा है, तो ये भक्ति में बाधक है। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं क्योंकि भगवान श्री क्योंकि श्री भगवान नहीं चाहते कि अभक्तों तथा नास्तिकों को उनका साक्षात्कार हो। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भगवान के भक्त भगवान को जान सकते हैं, जो अभक्त हैं वो भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए तो इस भौतिक जगत में भी जेल बनाई हुई है ना, जेल बनाई हुई है, दिल्ली में तिहाड़ जेल है, यहाँ इस भौतिक जगत को भी जेली कहते हैं, यहाँ की इंचार्ज है दुर्गा देवी। तो उसका यही काम है कि जो अभक्त हैं वो भगवान की तरफ जाने से उनको रोकना। लेकिन यदि व्यक्ति जो जीव है वो दृढ़ है कि मैंने नहीं, जो मर्जी हो, चाहे मैं इस जेल में पड़ गया हूं, मेरे में 100 बुराइयां हैं, लेकिन मैं फिर भी भगवान की शरणागत हो जाऊंगा, तब दुर्गा देवी दिखती हैं कि ये वाकई सिंसियर बंदा है ये। तब बोलेगी ठीक है, मेरे पीठ के ऊपर पैर रख करके जेल को पार कर जा, तो ये फैसिलिटी भी मिल जाती है। लेकिन उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प होना होगा। ये बाधाएं तो जब तक ये मनुष्य शरीर है या किसी भी जीव का शरीर है तो ये तो आएंगी, काम क्रोध लोभ ये सब आएगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे भगवान समझ जाएंगे कि ये बाकी सिंसियर बंदा है, तो इसको ऐसा ज्ञान दे दो कि इसका मन जो है काम क्रोध लोभ से हट जाए। किंतु उनके चरण कमलों की शरण लेने पर ये अवरोध हट जाते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव श्री भगवान शरणागतों के रक्षक हैं। जो भगवान की शरण ले ली तो वो इस भव सागर में डूब नहीं सकता है व्यक्ति। जैसे कभी किसी नदी के किनारे आप खड़े हो जाइए तो कोई तिनका अगर आपके चरणों में, अब प्रैक्टिकल देखना, कभी कोई तिनका आपके चरणों में आकर के बहता हुआ आपके चरणों के पास आ जाता है तो आपके चरणों में क्या होता है, एक घिरा सा बन जाता है पानी का। तो वो तिनका जो है उस घिरे में रहता है, दूर बह के नहीं जाता। बिल्कुल उसी प्रकार ये भव रूपी सागर जो है, यहां पर अगर हम भगवान के चरण कमलों का सहारा लेकर के तिनके की तरह नहीं तैरना है, तिनके की तरह तैरेंगे तब भी बच जाएंगे, नहीं जाएगा उस गुब्बर घेरी से, तिनका बाहर नहीं जाता है। लेकिन यदि आप चरणों को पकड़ लेंगे तो फिर कोई माई का लाल आपको भौतिक जगत को छोड़कर भगवत धाम जाने से रोक नहीं पाएगा। तो जहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंतु उनके चरण कमलों की शरण लेने पर ये अवरोध हट जाते हैं, कौन से अवरोध, आसक्ति लोभ काम आदि, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव श्री भगवान शरणागतों के रक्षक हैं। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता है। जब तक हम भगवान के चरण कमलों के शरणागत नहीं हैं, तब तक हम भक्त नहीं बन सकते। और शरणागत कैसे होंगे, अपने आप तो होगा नहीं, भगवान के शरणागत अपने आप तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या होगा, आप इतने पुण्यवान हैं कि आपको कोई साधु महात्मा मिल जाए, किसी साधु का संग मिल जाए, साधु संग सर्व शास्त्र के लम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु अगर आपको मिल जाता है, उसके आपके साथ थोड़ा सा भी संग हो जाता है तो आपको वो सिखाएगा कि भाई ये गलत रास्ते छोड़ करके भगवान की शरण में चलो, तब आपको ज्ञान हो, अपने आप ज्ञान नहीं होगा। या फिर कोई भक्त आपको भगवत गीता भागवत ग्रंथ दे दे तो आप इतने भाग्यशाली हैं कि वो पढ़ भी लें उसको, तब आप भगवान की शरण में आ सकते हैं, अपने आप नहीं आ पाएंगे। जब भगवान की शरण जाएंगे तो भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं, चाहे हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, कैसे भी पहुंच गए किसी तरीके से भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया, तो फिर इस भव सागर को पार होना मुश्किल नहीं है। तब वे उसे भीतर से बुद्धि प्रदान करते हैं। अभी हमारी बुद्धि है ही नहीं, मैं कैसे भक्ति करूं, मुझे भक्ति नहीं करने आती है, प्रणाम भी कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब भगवान के चरणों के शरणागत हो गए तो भगवान बुद्धि योग ददामि, हम मैं बुद्धि देता हूं, और जिसे मैं भगवत धाम वापस जा सकता हूं। शुरू शुरू में हमारे पास केवल इंग्लिश की किताबें होती थी, हिंदी की किताबें नहीं होती थी, तो हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो पहली किताब ही मुझे भगवत गीता एज इट इज मैकमिलन कंपनी की मिली। मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सारी समझ थोड़ी आ रही थी, थोड़ा समझ आ रहा था थोड़ा नहीं आ रहा था। तो जब ये वाला श्लोक पढ़ा, पढ़ता गया मैं बुद्धि योग ददामि वाला, तो मैं कह इसका मतलब भगवान ने कहा है तो जरूर समझ में आएगा। तो उसी का परिणाम है कि अभी 50 साल से 52 साल से इस कुंड में है। तो इसलिए ये भगवान बिल्कुल सच कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको बुद्धि दे देता हूं ताकि वो मुझे समझ जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा स्कॉलर, उसने पीएचडी क्या क्या कर रखा है, एमफिल वगैरह कर रखे हैं, भगवान की शरण में नहीं है तो वह भगवान को समझ नहीं सकता है। ये पक्का फार्मूला है भगवत धाम जाने का। इसके लिए कोई बड़ी ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत एमए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ो नहीं, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन केवल है शरणागति, भगवान की शरणागति, विश्वास, पूरा विश्वास। शुरू में तो फिर बोलते कि क्या हम अंधविश्वास करें, नहीं अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरू में तो विश्वास करना ही चाहिए ना आपको, करें। जब तक विश्वास नहीं करोगे तो कैसे होगा, उसको अंधविश्वास तो नहीं करेंगे, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, उसके बाद फिर भक्तों का संग कीजिए, सुनिए, और हमें लाभ हो जाएगा उसका। शुरू में जब सुखदेव गोस्वामी ने, अभी मुद्दे पे आते हैं, ब्रह्मांड के जितने भी प्रशासक हैं, क्योंकि जैसे हमारे भारतवर्ष में गवर्नमेंट है तो उसमें भी प्रशासक हैं बहुत सारे, कोई वित्त मंत्री है, कोई जल मंत्री है, कोई फलाना मंत्री है, कोई फूड मिनिस्टर है, तो ऐसे भी भगवान सारे काम अकेले थोड़े करते हैं, वैसे तो वो कुछ भी कर सकते हैं एक मिनट में भी, लेकिन खुद वो सिर्फ मुरली बजाते हैं और बाकी दुनिया के काम उन्होंने बांट रखे हैं, तुम्हारा ये काम है। तो मनु के बारे में बताया सुखदेव गोस्वामी ने, और उसके बाद जो ये कथा आई कि ये जो इस मनमंत्र में, क्या नाम था मनमंत्र का नाम, तामस मनमंत्र में भगवान हरि का अवतार हुआ और उन्होंने गजराज को उभारा, उसको उसकी जूनी से उठा करके भगवत धाम ले गए और ग्रह से मोक्ष किया उसका, और ग्रह का भी उद्धार किया, जो हुहु नाम का गंधर्व था उसका भी उद्धार किया। तो जब ये बात सुनी ऋषद महाराज ने, तो उनको फिर ये बात होगी, भाई ये कथा मुझे सुनाइए, ये क्या कथा है कि गजराज को घड़ियाल के मुंह से छुड़ाया, मोक्ष किया उसका, तो ये पूरी कथा सुनाइए। तो ये पूरी कथा आप पहले सुन चुके हैं, कई दिनों से सुन रहे हैं, दोबारा से सुनाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तुरंत अपने धाम से आ गए और अपने वाहन को भी छोड़ दिया, वो भी पीछे आने लगा और गजराज और घड़ियाल को दोनों को पकड़ करके स्थल पे ले आए और उसका मुंह काट दिया घड़ियाल का और रक्षा कर ली। और ऐसा बताया गया है, ये सब करने के बाद जो गजराज है उसको भी भगवान भगवत धाम ले गए, वैकुंठ में ले गए, खुद लेके गए हैं वो वैकुंठ धाम में, ऐसा भागवतम में आप पढ़ेंगे। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि जब संकट में थे गजराज जी तो उन्होंने पिछले जन्म में थोड़ी भक्ति की थी, तो वो श्लोक उनको याद आ गए जिससे, और बाद में उसी झील से कमल का फूल लेकर के ऊपर किया और भगवान तुरंत रक्षा करने के लिए आ गए। हम पुकारे तो सही भगवान को, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं हमारी, कोई ऐसा समय नहीं है जब भगवान हमारी रक्षा नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें हैं तो फिर वो श्लोक पढ़ने रह जाएंगे, लेकिन वो भी बातें बतानी जरूरी हैं। द्रौपदी ने भी जब दुनिया भर की से मदद मांगनी चाहिए तो कहीं मदद नहीं मिली, लेकिन जब कृष्ण को पुकारा तो तुरंत साड़ी रूप में अवतार बन गए। प्रहलाद महाराज को भी ऐसे रक्षा की, सबकी रक्षा की, ऐसे हमारी भी रक्षा करते हैं जब हम संकट में होते हैं, और संकट में तो है ही है वैसे हमेशा ही, भौतिक जगत का मतलब ही संकट है, संकट में है तो हमारी रक्षा करते हैं। एक छोटी सी इंस्टांस सुनाता हूं मैं, एक दफा दिल्ली से अपना वृंदावन से जा रहे थे दिल्ली रास्ते में, और हरिकृष्ण महामंत्र का जाप करते जा रहे थे मैं और मेरी पत्नी। गलत रास्ते से एक ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर ने, नई गाड़ी थी वो, स्टीलो गाड़ी थी, जेन नई गाड़ी लेके आ रहे, तो उसने टक्कर मारी और तीन चार टक्करें मार दी और हमारी गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर और उल्ट करके राइट साइड, लेफ्ट साइड में गिर गई। और पीछे से हरियाणा रोडवेज की बस आ रही थी, वो भी फुल स्पीड में आ रहा था, उसने बेचारे ने देख लिया। और मैंने वाइफ को बोला, मैं उर्मल नाम, उर्मल आखिरी हरे कृष्णा राम राम, अभी बचेंगे नहीं, वो भी समझ गई बचेंगे नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर ने तो मार दिया, गाड़ी तोड़ दी और उल्टा भी दी और पीछे से बस आ रही है, बस इतना क्या करके गाड़ी हमारी गिर गई और पीछे से उसने ब्रेक लगा दिया, तो भगवान ने रक्षा कर ली। और जो गाड़ी टूट गई थी जब उसको मंदिर में जाके खड़ा किया तो मंदिर वाले बोलते हैं कि ये चलाने वाले जिंदा हैं कि मर गए, कहां चले गए वो, इतना हालत बुरी हो गई थी उसकी गाड़ी की। और एक और बात साथ में जुड़ गई इसके साथ कि उसके बाद मैं गाजियाबाद का प्रेसिडेंट बन गया और वो गाड़ी मैंने ठीक कराई इंश्योरेंस से, और जितने की गाड़ी ली थी उतने की बिक भी गई, जितने की 3 लाख या समथिंग की ली थी उतने की गाड़ी किसी ने ले ली हुई गाड़ी। तो भगवान रक्षा करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार गजराज ने मंत्र पढ़े हमें भी कुछ ना कुछ मंत्र याद होने चाहिए, उनका अभ्यास करो खूब मंत्रों का, जैसे नरसिंह देव का मंत्र बोलते हैं नामस्ते नरसिंहाय, ये बोल सकते हैं। और खास करके कलयुग में तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े पावरफुल मंत्र हैं ये, इनको जब हम, हमारा आखिरी समय आएगा तो ये मंत्र याद आएंगे हमें, जैसे गजराज को याद आ गए और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो जितना पढ़ सकूंगा अभी अनुवाद पढ़ूंगा, आप सुनते जाइए, और बाकी जो बच जाएगा आप घर जाके पढ़ सकते हैं, सबके पास भागवत में है ना, यहां मैं मंत्र पढ़ने का, क्योंकि मैंने पहले बोल चुका हूं इसलिए पढ़ेंगे, जितना पढ़ सकेंगे पढ़ेंगे, बाकी घर जाके पढ़िए। हाँ सुनिए, हमें मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं खास करके हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए, ये हमारे बहुत काम की बातें हैं ये। और साथ में ये मंत्र हम इसलिए बोल रहे हैं जो गजेंद्र जी ने बोले हैं, इससे भी भगवत धाम मिल सकता है, ये भगवान ने वायदा किया है यहां पर, और सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है, इसलिए मैं पढ़ना चाह रहा हूं। मेरा भी भला हो जाएगा, आप सबका भी भला हो जाएगा। पहला मंत्र तो मैं पढ़ता हूं, 28 मंत्र हैं वैसे टोटल। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् अध्यात्मकम् पुरुषाय धीविजाय परेशाय भी धीमहि। गजेंद्र ने कहा मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह भौतिक शरीर आत्मा की उपस्थिति के फल स्वरूप कार्य करता है, अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए भी पूजनीय हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट हुए हैं, मैं उनका ध्यान करता हूं। श्री भगवान ही वह परम धरातल हैं जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे अव्यव हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वे वह पुरुष हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण हैं। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जो सभी प्रकार से आत्म निर्भर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त कर बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य, प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। अब ब्रह्म संहिता भी पढ़ सकते हैं, वैसे मंत्रों में वो भी याद कर सकते हैं काल क्रम से, और वही चीजें जो ब्रह्म समित में बताई हैं, लगभग वही चीजें यहां पर भी बताई हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिराधिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो यहां पर भी यही बता रहे हैं। काल क्रम से जब लोकों तथा उनके निदेशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है, तो गहन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, ये शब्द बोल सकते हैं हम सारे, बोलिए मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। ये लास्ट लाइन हम सब बोलेंगे इकट्ठे मिलकर के। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवता गण भी नहीं समझ पाते, और निश्चय ही बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं जो पशुओं के तुल्य हैं। ना तो देवता तथा मुनि ना ही बुद्धिहीन मनुष्य श्री भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और ना ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बोलिए ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरी रक्षा करें। अभी जानन्ति माम मूढ़ा, भगवत गीता का श्लोक है ना, वही ये भी वही बोला गया यहां पर भी। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबके मित्रवत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्व कल्याण प्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। अभी बोलिए, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे गंतव्य हों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। ये भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगी शक्ति द्वारा भगवान श्री रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उसमें कहा है ना, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन, उन्हीं की शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव, बोलिए, अतएव वे परम ब्रह्म हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को सादर नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय में एक साक्षी स्वरूप स्थित हैं, जो व्यस्ति जीवात्माओं को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, ये पूरा बोलिए। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को सादर नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित हैं, जो व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति उन शब्द शुद्ध भक्तों को होती है। अभिजानन्ति मां मूढ़ा मानुष, जो मूढ़ लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्ति के द्वारा तो भक्त बनना पड़ेगा हमें, तभी भगवान को पहचान पाएंगे। चाहे हम 20 साल से दीक्षा लेके बैठे हुए हैं, अगर पूर्णता शरणागत नहीं हुए हैं तो बहुत मुश्किल है। पूर्णता शरणागत होना है हमें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता हैं, दिव्य जगत के स्वामी हैं। अतएव, बोलिए, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। 2-3 मिनट और हैं। नमः शांताय गौराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। मैं सर्वव्यापी भगवान, बोलिए, मैं सर्व वसुदेव को उनके भयानक रूप, नरसिंह देव को उनके पशु रूप, ब्रह्मदेव को निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले, भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूं। ये यहां पर एक बात समझ लीजिए, जो बुद्ध के बारे में आया ना, केशव दित्त बुद्ध शरीरा जय जगदीश आर्य, जो आजकल जो बौद्धिस्ट बन गए हैं उनके बुद्ध नहीं है ये भी समझ, ये बुद्ध दूसरे हैं। हालांकि ये भी राजा के पुत्र हुए हैं, वो भी राजा के पुत्र, देव थोड़ा अंतर है। भक्त हम पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं भी। बोलिए, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो भौतिक गुणों से रहित हैं किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यायक्ष साक्षिने पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृते नमः। बोलिए, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। आप परमात्मा, हर के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष भौतिक प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं। हाँ, हमारा शरीर के भी स्वामी वही हैं। अतएव आप परम पूर्ण हैं। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदा, जब पढ़ते हैं ना वहां पर, तो यहां भी यही बताया गया, अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो 13 तो मैंने पढ़ दिए, अभी 14 के बाद आप खुद घर में पढ़ना और लाभ मिलेगा अवश्य। जितना पढ़ा उसका भी लाभ मिलेगा, और जो आगे रह गए हैं वो घर में बैठ के पढ़िए सारे परिवार के साथ, और जो ब्रह्मचारी हैं वो अपने ब्रह्मचारियों में मिलकर के पढ़िए, अवश्य लाभ होगा, भगवत धाम के जाने के योग्य बन जाएंगे। हरे कृष्ण। तो सारा डिटेल हो गया, प्रश्न तो कोई है नहीं शायद, लेकिन है फिर भी पूछ सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हाँ, एक बात इसमें एक और बताना भूल गया मैं, साथ में ये भी बताया गया है, जितने भी ये मंत्र हैं जो गजराज ने बोले या महामंत्र है, वैसे तो आप कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक नहा करके पढ़िए तो बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।